एक दिन जब सब चला जाता है तो हाय हाय करके उसी लिए मरते हैं। तो जिनको धन का मद है, जिनको अपने रूप का अभिमान है, ऐसे स्त्रियां और ऐसे पुरुष ऐसे रूप के मत वाले भगवान का भजन नहीं करते। जिनको अपने जाति का मत है, मैं उच्च कुल का हूं, और जिनको अपनी विद्या का मत है, उन लोग को मत के मारे कुछ सुहाता नहीं है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। ये मत उनमें नहीं था सुदामा मित्र में, वो तो भगवत भक्त थे, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। उनकी पत्नी कहीं से मांग जुपर कर लाती, ये कभी कोई चेष्टा नहीं करते। आना होगा अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा तो चेष्टा से भी नहीं आएगा, परम संतोषी थे। और ये कहीं से मांग जुपर कर लाती, रसोई थोड़ी सी बनाती, अपने पति के लिए देती, पति देखता ये थोड़ा सा है मैं क्या खाऊं, वो थोड़ा सा मुख में दे करके उसके लिए थोड़ा सा रख दे। इसे न उनका पेट भरता न उनका पेट भरता, वो दुखी थी जो हमारे पति की कोई सेवा में नहीं कर पाती, और वो बड़े दुखी थे जो हमारी पत्नी को मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको समय नहीं है, दिन रात भजन में समय चला जाता है, दुख में भजन हो सकता है, सुख में होना बड़ा भयंकर चीज है। इसलिए धनी लोग नहीं करते, क्योंकि सुख में रहते हैं। देवता लोग भी भगवान का भजन नहीं करते, उसमें डूबे रहते हैं, अहंकार के मद में रहते हैं। इसलिए पत्नी ने कहा, प्रभु एक बार बार हमें अपने सखा के पास को जाए, मैं नहीं जाता हूं उनके पास में कुछ मांगने की। अरे मांगना नहीं, वो तो ब्राह्मण के प्रति बड़े उन्हें करुणाशील है, आप जाएंगे देखेंगे जो घर भर जाएगा। बड़े चिंता में पड़े, उसने कहा अच्छा एक लाभ तो होगा हमें, क्या लाभ होगा? परम लाभ, कृष्ण का दर्शन इसी बहाने मिल गया, मैं मानूंगा कुछ नहीं। इस बहाने भगवान का दर्शन, जैन के न उपाय न कृष्ण मनोनिवेश, कोई भी उपाय हो उसके उपाय के द्वारा भगवान का दर्शन जल्दी हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, वही उपाय सबसे श्रेष्ठ। ऐसा सुन करके वो गए और सुना न, मांगा कुछ नहीं। दूसरे दिन अपने चरण कृष्ण ने रानियों के साथ उनके पैर पखारे, जहां पर बलदेव नहीं जा सकते, उस पलंग पर जहां पर अपने बैठते हैं उनको बैठाया, और 16108 रानियां भी घड़े से लेकर के सोने के घड़े से चरणों को पखार रही है, कृष्ण पखार रहे हैं। और कितनी तरह की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। दूसरे दिन बिना कुछ दिए हुए ऐसे ही भेज दिया, एक पीली धोती उसमें एक रुपया भी और चावल भी यदि पीला बांध देते तो भी एक बात थी। विप्र ने सोचा अब ब्राह्मण को क्या कहें, अच्छा हुआ नहीं दिया, पेड़ पर ऊंचे डालियों में अंगूर है तो वो क्या कहता है गीदड़, लोमड़ी, लोमड़ी क्या कहती है, ये खट्टे अंगूर है क्योंकि मिल नहीं रहा। तो वैसे मानो वो कह रहे हैं ये अच्छा हुआ नहीं दिया, और सोच करके जा रहे हैं और कृष्ण ने कैसे उनका घर भर भर दिया। उनकी स्त्री परम रमणीय युवती हो गई, उसके भी स्तन सुख गए थे, बूढ़ी हो गई थी, किशोरी की उम्र में ही परम सुंदरी हो गई और उसके घर में 16108 घर हो गए। एक एक रानियों ने दे दिया, 16108 घोड़े बंद गए, हाथियां बंद गई और वैसे ही सब कुछ उनका भर गया। सवेरे जब वो अपने घर पर पधारे तो उनकी रानी जैसी पत्नी और उनकी सोने के थाल में आरती की वस्तु लेकर के सहेलियों के साथ में गान बजाना करती वो वहां पर आई। उन्होंने कहा कि ये कौन आ रहा है मेरी तरफ में, संकुचित होकर के पीछे हटने लगे और वो आगे बढ़ रही है, मुस्कुरा रही है, ये हमको पहचान नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद में उनको पकड़ लिए और उनके गले में माला दिए, स्पर्श होने के साथ ही साथ में वो भी नोट दिए। अब उन्होंने देखा कि ये मेरी पत्नी है और वो ऐसा उसने क्यों किया, उनकी पत्नी को तो ज्योति बना दिया, इनको क्यों नहीं ज्योति बना युवक बनाया, इसलिए कि पत्नी पहचानने से ही ठीक है, पति ना पहचाने तो भी कोई बात नहीं है, पत्नी पहचानने से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और यदि पत्नी ने पत्नी को नहीं पहचाना तो उसका पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सोच विचार करके उनको उनकी पत्नी को पैसा कर दिया, उनको नहीं बनाया, पीछे से इसके स्पर्श। ऐसे बिना मांगे भी कृष्ण देने वाले हैं, लोग डरते हैं। ऋषि ने कहा था प्रियतम आपने कहा जैसे जितने अकिंचन दरिद्र लोग हैं मेरी पूजा करो, धनी लोग मेरा पूजा नहीं करते और उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, इस डर के मारे धनी लोग दुर्गा जी की पूजा, काली की पूजा और शंकर जी की, गणेश जी की ये सब पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा डर के मारे नहीं करते हैं। किंतु प्रभु आपने सुदामा के ऊपर बिना मांगे हुए नहीं दे दिया, पांडवों को बिना मांगे ही समस्त पृथ्वी का राज्य आपने नहीं दे दिया, आप तो बड़े औखटदानी हैं। उन लोगों से भी ये गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, किसके बल पर देते हैं, कृष्ण के बल से देते हैं। कृष्ण यदि उनको देने की शक्ति न रखते हैं तो वो लोग दे ही नहीं सकते हैं, कृष्ण का नाम करके उनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इसलिए कृष्ण से बढ़कर के कोई और देवता नहीं है। जो कृष्ण का भजन नहीं करते, देवताओं का भजन करते हैं, वो अंत में ठगे जाते हैं, उनको इस श्लोक में भी शांति नहीं मिलती, उस श्लोक में भी शांति नहीं मिलती। वो लोग दयालु नहीं है, क्यों नहीं, उनसे 20 मांगो तो 20 देते, रावण को 10 सिर दे दिया ना, उससे उसका भला हुआ, सोने की लंका दे दी क्या भला हुआ, विभीषण को देखो भक्ति दी उनका जीवन बन गया। ऐसे ही प्रभु बड़े दयालु हैं। आपने सुना अभी ये द्विविद्र बंदर का उपाख्यान, द्विज रामचंद्र जी का पार्षद था, रामचंद्र जी के पुल बांधने में और लंका में लड़ाई युद्ध करने में उन्होंने बहुत सेवा की, किंतु लक्ष्मण जी की कुछ निंदा की और उसका यह फल हुआ उसकी बुद्धि बिगड़ गई, अस्त्रों का संग करने लगा, काल जमन जरासंध दुर्योधन दुशासन सपनी का ये सब संग करते 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 एकदम बिगड़ गया। इसलिए दुसंग में मत जाओ कभी भी। जो लोग भगवत भक्त हैं, जो सदाचारी हैं, वो जिस रूप में धनी हो या गरीब है उन्हीं से प्रीति रहो, और नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, भगवान की भक्ति नष्ट हो जाएगी, अंत में बलदेव के द्वारा। आपने सुना बलदेव जी तीर्थों का भ्रमण करते 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 कुरुक्षेत्र में गए और वहां पर वो लोमहर्षण पाद ने उनका आदर नहीं किया, उठे नहीं, भागवत पढ़ रहे थे, जब बलदेव जी का आदर ने किया तो बलदेव जी ने कहा मैं जगत गुरु, मैं स्वयं भगवान, और तू भागवत पढ़ रहा है, तुमको इतना कांड ज्ञान नहीं है जो उनका आदर करना चाहिए, और तुम उठ करके खड़े होकर के अभी वादन नहीं किया, तुम भागवत कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारा पहना बेकार का है। बस उसका गला हाथ बेकार है, जब वो गिर करके मर गया तो वहां के ऋषि लोग उनसे प्रार्थना किया, प्रभु अब हम किसे भागवत सुनेंगे। अच्छा ठीक है, बस उसी का एक छोटा सा पुत्र था, उसके ऊपर में सिर पर हाथ दे दिया और बोले जितनी विद्याएं हैं विश्व की सब तुम्हारे अंदर में वेदों की विद्या है, तुम भागवत का परम पंडित होगा और तुम इन ऋषियों को समस्त भागवत वेद उपनिषद शास्त्र का श्रवण तुम करा। इस उनका नाम हो गया उग्र सभा, उग्र सन्न के एक बार कहने से उनको कभी भी जीवन में कोई चीज भूलता नहीं था, उनको स्मरण रहता था। अंत में ये सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने परीक्षित की सभा में कथा ये सुनी थी, ये इसलिए यदि भागवत पढ़ करके भी वैष्णव का आदर नहीं किया, भगवान का आदर नहीं किया, बैठ करके पाठ कर रहे हैं और गुरु जी या कोई उत्तम श्रेणी का वैष्णव आया, भक्त आया, आदर नहीं किया तो उसका सर्वनाश होना जरूरी है। हमने इस मथुरापुरी में देखा है, संत लोग हम लोग सब लोग मिल करके कहीं गए, कोई पुजारी किसी जगह का नाम नहीं लेंगे, वो पुजारी माला लेकर के ऐसे निकाल करके ऐसे जैसे फेंक देता है ना, ऐसे फेंक देते हैं, छूते नहीं है। मैं बहुत पवित्र ठाकुर जी की सेवा करता हूं, हृदय में कामना है वासना, पैसे के लिए वो नौकरी करते के पूजा करता है और वैष्णवों का अनादर ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों का सिर बलदेव जी काट लेते हैं। उनको ज्ञान नहीं के कहते हैं कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, अपने को स्नान करने से ही और ठाकुर जी की पूजा करने से ही अपने को पवित्र मान लेते हैं। पवित्र तो वो है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करके, भगवान का ही सबको जान करके, सबके अंदर में भगवान का दर्शन करता है, केवल शिला पूजा से नहीं होती। इसलिए सब में भगवान की भावना रख करके जो सबके प्रति परम उदार है, भगवत भक्ति का दान करते हैं, वो सबसे सर्वोत्तम है, ये निकला है। और भी गोपियों के संबंध में सुना आप लोगों ने, गोपियां कुरुक्षेत्र में गई, कृष्ण जो ही सुना कि ब्रजवासी लोग नंद बाबा और गोपियां आई हैं और यशोदा मैया आई, बस झट वहां पर सबको छोड़ दिया। वहां पर कितने बड़े बड़े भक्त लोग थे, कुंती भी थी और भीष्म पितामह जी और सब उनके सगे संबंधी सब लोग थे, किसी के तरफ में नहीं देखा और सुना जो मैया आई है, मैया नंद बाबा है, पर सबको छोड़ करके वहां से दौड़े और दौड़ करके इधर में गाड़ी खड़ी हो गई, नंद जशोदा गाड़ी से उतरे और विलाप में बेटा 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 कह करके कन्हैया कन्हैया और कृष्ण मैया मैया कहकर उनके गोदी में बैठ गए और वो अंतर से छिपा करके और रोने लगी। विलाप नंद बाबा के चरणों में बलदेव जी गिर गए, उन्होंने गोदी में उनको उठा लिया। इस प्रकार से दोनों मिलने लगे। वहीं पर रुक्मिणी रोहिणी जी आती है, देवकी आई, उन्होंने दिखा रही हमको आज तक इसने मैया कहा ही नहीं, कभी हमारे हाथ से कभी मक्खन और रोटी खाया नहीं, और आज इसको देख करके यशोदा को और मैया मैया कह करके विलाप कर रहा, और वो भी इसको बेटा बेटा कह करके अपने अंचल में अपने भुजपाश में बंद कर रखा है। अधिकारी हमारे बेटे को लेकर के कहीं फिकना चली जाए, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से हमने बचा करके इसको चुरा करके रखा है, फिर वही कहीं नहीं चली जाए। इसलिए यशोदा जी को और कृष्ण दोनों को सुना करके कह रही है, अरे बेटा कृष्ण ये देखो, ये हमसे भी अधिक हमारा तुम पुत्र हो और हमसे भी अधिक तुमको ये स्नेह करके आंख की पुतली के तरह से पाला। इन्होंने अपना और पराया का कोई विचार नहीं रखा, तुम पुत्र तो मेरे हो किंतु तुमको पुतली की भांति ये प्यार किया। कहने का तात्पर्य क्या, कृष्ण सुन ले कि मैं जो देवकी का पुत्र हूँ यशोदा, और यशोदा भी सुन ले कि ये मेरा पुत्र है। देखा रोहिणी ने यही तो मामला गड़बड़ होगा, इनका प्रेम भाव बिगड़ जाएगा, ये बाधा डाल गई है मान। उन्हें कहा जैसे अरे सखी बहन, अरे देखो कुंती जी खड़ी है और सब लोग खड़े हैं, तुम मिलने के लिए चलो, हम लोग चले और उनको भी सांत्वना दें, और इधर में केवल इसके पास में रहने से काम नहीं चलेगा, चला कि चतुराई से कह करके और उनको अपने साथ लेकर के निकल गए। यशोदा जी से मिली, यशोदा से मिलने के बाद में यशोदा जी ने देखा, मन ही मन में सोचा यदि एक सेकंड की देवी होती है ना तो अभी एक गोपियां मरेंगी। बड़े धैर्य से इतने दिनों तक किसी प्रकार से यहाँ तक आई है, अब एक सेकंड रहने वाली नहीं है। जैसे कोई बहुत दूर से बोझा लेकर के आता है, जब अपने द्वार पर पहुंचता है तब रहा नहीं जाता, बाहर से ही दरवाजे पर भी रोक फेंक देता है। ऐसे ही ये निकट में जब कृष्ण गए, अब ये बचेंगे नहीं, ऐसा देख करके उन्होंने बलदेव जी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। यदि वहां रहती ना तो तब फिर प्रेम गड़बड़ हो जाता, इसलिए वहां से चली गई। इसके बाद में गोपियों उससे मिली, और जैसे जैसे बातें हैं बहुत अभी बहुत इसमें बातें हैं, गोपियां रीछ गई, कुछ रुष्ट होकर के कृष्ण को जब ब्रह्म का ज्ञान सुनाया, कुछ रुष्ट हो गई। तो जैसे हम क्या संसार रूप में पड़ी हुई है, हमको ये ब्रह्म का ज्ञान देते हो, किसको ब्रह्म का ज्ञान देना चाहिए आपको पता नहीं है, मैं बालपन से ही हम लोग आपके चरणों में अनुरक्त हैं, हम आपको एक सेकंड के लिए नहीं भूल सकती, और आप कहते हैं कि आप संसार में जो पड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हमारी चरण कोमल ही उनके लिए नौका स्वरूप है, तो हम आपको भूली कब और संसार में गई कब, हम तो ये चाहती हैं आपके चरण कमलों से अपने चित्त को हटा ले, आप जैसे हटा रखा है हम लोग भी हटा करके परम सुखी हो जाएंगे, किंतु हम तो निकाल नहीं पाती है, हम लोग बर्बस्त आपकी चिंता करते हैं, इसलिए हमारा संसार कहाँ है। ऐसा ज्ञान योगियों को दो, आप बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमारा मन और हृदय एक, इसलिए आप यदि वृंदावन रूपी हमारे मन में यदि वहां पर चले वृंदावन में और हमसे मिले, तभी हम लोगों का यह विरह दूर हो सकता है, और किसी उपाय से नहीं हो सकता। कृष्ण बोले जैसे ठीक, हमारे प्रति जो भक्ति करते हैं वो संसार में सब कुछ उन लोगों ने कर दिया, हमको वो जीत लेते हैं, किंतु तुमको तो हमारे अंदर में भक्ति के बाद में स्नेह प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव सब हो गया है, मैं तो बर्बट तुमसे लोगों से खींचा हुआ और तुम्हारे बसी हूँ, जब ऐसा प्रेम है स्नेह तुम्हारे अंदर हमारे, और मैं अधिक दिन नहीं वहां रह सकता, बहुत जल्दी से जल्दी मैं आ रहा हूं। ये कर करके अपने मनोरथ पर कृष्ण को चढ़ा करके और वृंदावन ले आई, और किस प्रकार से लाई ये रथ यात्रा के निगूढ़ लीला में इसका वर्णन होता है। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं आज तक यहाँ पर हुई, इसके बाद में एक लीला भी और आएगी। सब देवताओं के अंदर में, ऋषियों के अंदर में यह संदेह था कि सबसे पूजा किसकी पहले की जाए, सबसे श्रेष्ठ देवताओं में कौन। किसी ने शंकर को बताया, किसी ने गणेश जी को बताया, किसी ने कार्तिकीय जी को, किसी ने दुर्गा जी को, किसी ने अंबिका जी को, किसी ने किसको बतलाया, निर्णय नहीं हो सका। भृगु ऋषि के ऊपर में ये भार दिया गया। भृगु ऋषि दौड़ करके अपने पिताजी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को प्रणाम किए बिना उनकी गद्दी पर बैठ गए। तो ये बड़ा उद्दंड हो गया। तो जब तुमको संपात देता हूं बदमाश संचार, पिता को तुम आदर नहीं देते, कुछ क्रोध हो गए, वहां से भग करके आए शंकर जी के पास। शंकर जी उनके गुरु हैं, शंकर जी के पास में उनको प्रणाम करना था दूर कर रहा। शंकर जी ने आओ बेटा आओ, और तो बैठो बैठो, उनके शिष्य हैं। बड़े कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हैं, आपको मतलब क्या है? गजनी खगड़ी, सबसे मुंड वाला पहनने वाले, सर्पों की माला पहनने हुए, और भस्मशान किया, वो भस्म अपवित्र भस्म सवन समय लगाने वाले, सबसे अपवित्र रहने वाले, आपसे हमारा संपर्क क्या है? अरे परमात्मा, तुम हमको ऐसा कहता, हम अपने गुरु को ऐसा कहते हैं, तुम हमारा स्वरूप नहीं जानता। पैतृ सोल लोग मारने दौड़े तुम्हारे भगे, और गए फिर समुद्र में नारायण के पास में, जहाँ पर लक्ष्मी जी के अंक में अपने पैरों को देख करके बड़े आराम से सो रहे हैं। और उन्होंने आओ न देखा न पाओ, आगे न पीछे, अपने दाईं हाथ पैर से एक उनके छाती पर एक पैर मारते ही प्रभु झट उठ गए और उनके चरण पकड़ लिए। ओहो कितने कोमल से कोमल आपके श्री चरण, और हमारा पत्थर चल वज्र से भी कठोर, ये आपको चोट लगा होगा, आप मुझे क्षमा दीजिए। बस क्षमा मांगते ही वो एकदम रोने लगे, इनके चरण में पड़े। ऐसी क्षमा आपके अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकती, इसलिए आप समस्त देवताओं के भी आप परम देवता हैं। इसलिए भूल करके भी जो आपको छोड़ करके दूसरों की पूजा इत्यादि करते हैं, वो लोग भूल करते हैं, इसलिए आप ही की पूजा आगे होनी चाहिए। ऐसा कर करके देवताओं के और ऋषियों के समाज में आकर के उन्होंने घोषणा की, ये विष्णु कृष्ण ही राम ही, ये विष्णु तत्व है, यही नारायण है, यही समस्त देवताओं के उपास्य हैं। देवता लोग और सब लोग इन्हीं के बल पर दूसरों को कुछ देते हैं, इसलिए इन्हीं की उपासना होनी चाहिए। इस प्रकार से सब लोगों ने विष्णु की कृष्ण की सबसे सर्वोत्तमता स्वीकार करके उनकी पूजा में लगे। आज बहुत विलंब हो गया है, कल भी आज ही की भांति कथाएं होंगी और शाम को भी कथा होगी, और कल समाप्त नहीं होगा कि परसों समाप्त होगी सवेरे। आप लोग सभी लोग जैसे प्रतिदिन आती हैं वैसे आते हैं, ऐसे ही सवेरे 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 1-1.5 घंटा तक कथा होगी, जिसके बाद समापन करके आरती करके प्रसाद लेकर के हम लोग
क्या विधि पराधलक्ष्य चित्ताश्च कामादितरंगम
शरणं
प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतशिष्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुः पुत्रे सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतरिजनं मा। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति राधे त्वं मां चरणं स्थिति. श्रील गुरु पार्षद की कृपा से और साथ ही साथ में श्री गुरु गौरांग गंधर्विका देधारी राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से हम लोगों का आठवां दिन, सात दिन हम लोगों के निर्विघ्न रूप में बड़े आनंद के साथ में हरि कथा श्रवण करते करते और कीर्तन के माध्यम से ये व्यतीत हुआ. तनिक भी कोई विघ्न बाधा कुछ भी नहीं. हम लोग नौ स्कंद तक कथा सुनने के बाद दशम स्कंद में पूर्वार्ध को सतब्रज लीला को समाप्त कर मथुरा की लीला को भी समाप्त कर द्वारका के लीला में प्रवेश हम लोगों ने किया. वहां पर कृष्ण का विवाह, बलदेव जी का विवाह और उनकी संतान संपत्ति इत्यादि के संबंध में मृग महाराज जी का उपाख्यान, बलदेव जी प्रभु का तीर्थ में भ्रमण करना इत्यादि हम लोगों ने श्रवण किया. लोग इन्हीं कथाओं का स्मरण करके भव सागर से अनायासी पार हो जाते हैं. मालूम नहीं होता कि कब हम भव सागर से तर गए. जब उस पार जाते हैं तो देखते हैं वो स्पत तुल्य हो जाता है, जैसे गाय के बछड़े का खून उसमें पानी रहे. आदमी अनायासी पार हो जाता है. उसी प्रकार से इस संसार में विचरण करते हुए यदि भगवान की कथाओं का श्रवण किया अनायासी विश्व ये संसार को हम पा मालूम नहीं हो. यदि भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान का नाम किया जाए तो अपने जितने भी प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्व और जितने भी कर्म हैं उन सब से वो पार हो जाए. योगियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोग करना पड़ता है. वो नहीं क्षय होता बिना भोग किए हुए, किंतु भगवान के नाम के प्रभाव से अनायासी या इन भगवान की कथाओं को सुन करके अनायासी भव सागर से अभी पार. उनको इसका फल नहीं भोगना पड़ता. अजामिल को कौन सा भोगना पड़ा, वाल्मीकि जी को कौन सा अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ा, नारद जी को कौन सा भोगना पड़ा. अनायासी भगवान का नाम करके भव सागर से विघ्न बाधाओं को देने वाले उन लोगों के सिर पर भी और जम के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके चले जाते. इसलिए भगवान अपने जाने के बाद में अपनी अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद में अपनी कथाओं को भागवत रूप में छोड़ जाते. इसलिए इनको भागवत रूपी सूर्य बदलाए गए. कृष्ण जब भी चले गए उन्होंने भागवत को छोड़ दिया. इसे संसार का मंगल। अब हम लोग चलते हैं, हमने सुना कि कृष्ण गुरु कुल में गए, साठ कलाओं की विद्याओं को साठ दिनों में ही वो पारंगत हो। उसने सुदामा जी के साथ में गुरुकुल में पढ़ने का भी लीलाए। तत्पश्चात जब वो समावर्तन हुआ, आजकल जैसे यूनिवर्सिटियों में समावर्तन होता है, फंक्शन होता है, जबकि पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाती है, उनको डिग्री दे करके छोड़ दिया। तो ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से होंगे। तो समावर्तन, समावर्तन माने सब कुछ विद्या इत्यादि अध्ययन करके गुरुकुल से अपने गृहस्थ आश्रम में जब लौटते हैं घर में, उसको समावर्तन करते हैं। तो जब लौटने गए कृष्ण अपने घर पर, तो क्या उनको दें? कृष्ण ने कुछ देना चाहा, गुरु पत्नी और गुरु जी ने कहा हम ये सब सांसारिक चीजें नहीं देंगे, हमने सुना है अलौकिक आपकी क्रियाएं हैं, आप हमारा एक पुत्र प्रभास में हम लोग स्नान करने गए और वो वहीं पर समुद्र में न जाने कैसे बह गया, उसका कुछ पता नहीं चला, आप हमारे उसी पुत्र को लेकर के दे दें। कृष्ण सोच विचार करके अच्छी बात, बस एकदम चले गए। प्रभास वहां पर पता लगाया तो पता चला कि एक राक्षस उनको निगल गया, पानी में डूब गया, शंखासुर। बस गए, शंखासुर को देखा और उसे युद्ध में मार करके उसका पेट चीर करके देखा, उसमें कुछ भी हाड़ जोड़ या कोई भी अवशिष नहीं। कहाँ गया? अब उसका पता लगाने के लिए संजीवनीपुरी में गए, जम के पास। वहां जाकर के देखा जी वहां पर भी नहीं है। फिर सिद्ध लोक में गए, जिसको ब्रह्मलोक कहते, ब्रह्मलोक उसको कहते हैं जी जीवात्माएं अंत में ब्रह्म में मिल जाती है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है। उस सिद्ध लोक में गए, वहां जाकर के देखा जे, उनसे जाकर के पूछा, पता चला जी हाँ ये तो वहां से भी लेकर के उसे चले। क्यों ले आए? मुक्ति में जीव ब्रह्म में मिल गया ऐसा कहते हैं जो, नदियां अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में जैसे लीन हो जाती है, पानी में जैसे पानी मिल जाता है, बृहत पानी में क्षुद्र पानी मिल जाता है, ऐसे ही जीवात्माएं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान में अपना नाम अस्तित्व छोड़ करके सुन मिल जाते। भागवत के अनुसार में अभी हम जिस भागवत का प्रवचन हम लोग कर रहे हैं, उसके अनुसार में जीव के लिए सबसे गंदी, सबसे भयानक और सबसे दुखदायी अवस्था है। हम लोग पड़े हैं, हम लोग हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते आनंद करते हैं, और ऐसा इंजेक्शन भर दिया जाए जो दिन भर रात भर बस बिछौने पे पड़ा रहे और फिर होश आए, फिर होश होने के बाद में फिर इंजेक्शन लगा देते हैं और वो दिन रात बस सोए, कुछ पता नहीं। ये स्थिति अच्छी है, न खाएंगे, पौध पिएंगे, भगवान का भजन करेंगे, घर घर डोलेंगे, सब लोगों से प्रेम पूर्वक रहेंगे। कौन ऐसा चाह सकता है? बेवकूफ व्यक्ति ऐसा चाह सकता है जो ब्रह्म में मिल करके अपनी सत्ता को खो दे? भगवान ने देखा कि हमारा गुरुपुत्र उस स्थिति में चला गया है तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाए, हमारे गुरु का पुत्र इस स्थिति में है। इसलिए वहां गए और वहां से उसको पकड़ लिए और पकड़ करके फिर इस जगत में ले आए। वही मधुमंगल जी हैं, शांतिकिनी के ब्रजलीला में पीछे से मन ताजी। ये तो द्वारका की लीला है, मथुरा की, वहां पर उज्जैन में ये बातें हुई थी, तो ये तो ब्रजलीला के बाद में होती, ये कैसे संभव हुआ? ये तो उलट फेर हो जाता है। तो समझो जो जब सबसे पहले कृष्ण की लीला इस जगत में प्रकटित हुई उस समय की ये बात है। जब जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तब ये लीला होती है। इसलिए वो प्रारंभिक रूप में हुई, समझ में आया कि नहीं? सोमवार है, पहले न मंगलवार है। जब मंगलवार से आरंभ करें तो अंत में सोमवार है, और सोमवार से आरंभ करें सोमवार के बाद में मंगलवार है। इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में प्रत्येक बिंदु ही पहला और अंतिम हो सकता है। इसलिए यहां पर वो प्रश्न नहीं होगा, इसलिए वो मधुमंगल जी को लेकर के आए जो कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ में विदूषक के रूप में रहते थे और कृष्ण का और सब लोगों का मनोरंजन किया था। ये लीला हम लोग पहले सुन चुके हैं। अब जब कुरुक्षेत्र में सब लोगों का समागम हुआ, इसके बाद में हुआ, तो देवकी जी ने कृष्ण से कहा, हमारे 6 पुत्र हुए थे इसके पहले और कंस दुराचारी ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला, इसलिए तुम गुरु पुत्र को ले आ सकते हो तो हमारे इन पुत्रों को भी ले आओ। मेरी बड़ी साध है कि अपनी गोदी में बैठा करके उनका लालन पालन करो। कृष्ण ने अच्छी बात है, मैं भी जाता हूं। बस वो चले गए और जाकर के जमपुरी से उन लोगों को ले आए। ये लोग थे कौन और क्यों मरे? ये लोग मारीची के पुत्र छौ थे, मरीचि ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक समय ब्रह्मलोक में ब्रह्म की सभा में सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदरी किशोरी लड़की को प्रकट किया। माया के रूप में जगत का मोहन करने के लिए सृष्टि की, किंतु इतनी सुंदरी रूप था, उसका सुंदर रूप था, अलौकिक रूप था, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कलाओं को समीट कर और उस लड़की को बनाया। जब वो प्रकट हुई, बस देखते ही रह गए उसके तरफ, एक तक से आंख की पलक नहीं गिर रही। ये मरीचि के पुत्र माने उनके नाती छौ, और भी सभा में लोग बैठे थे, देख करके हंसने, अरे देखो तो ये बूढ़ा बाबा अपनी इस छोटी सी लड़की के उसको ऐसे देख रहा है, भूल करके देख रहा है, किस रूप में देखते हैं मुक्त पुरुष लोग, बद्ध जी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखा, कामी व्यक्ति विश्व ब्रह्मांड को काममय देखता है। एक साधु पुरुष जगत को साधु पुरुष के रूप में देखता है, जैसे जिसकी भावना है, एक चोर सब जगत को चोर ही देखता है, एक दुष्चरित्र व्यक्ति जगत को ही दुष्चरित्र देखता है, ऐसा ये नियम है। इसलिए उन लोगों ने अपनी भावनाएं ब्रह्मा जी के ऊपर में, जिनसे वेद निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, एक तरह से मुक्त हैं, और उनके ऊपर में वो अपना विचार थोप दिया, हम जैसे हैं वैसे हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग अपराध करते हैं, इन अपराधों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, लोगों का गुण देखना चाहिए, दोष कभी मत देखो, दोष है तो रहने दो, तुम उसका गुण देख करके उससे सारग्राही हंस की भांति सार को ग्रहण, ये भागवत का विचार। और यदि तुम उनके दुर्गुणों को देखेगा तो होगा क्या, उनके दुर्गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे और तुम्हारे शुभ चीजें उसमें चली जाएंगी। इसलिए विषय लोगों के दुर्गुणों को नहीं देखो, निंदा मत करो और उनकी प्रशंसा भी मत करो, भक्तों की प्रशंसा करो, भगवान की प्रशंसा करो, उनका गुणान बात करो। ये आदमी बहुत धनी है, प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, धन मैल है, बल्कि भगवान को भुला देता है, इसलिए प्रशंसा की जरूरत नहीं है। ये आदमी बहुत बड़ा भारी दानी है, जागतिक लोग इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु मृग महाराज के अवस्था को जानने वाले लोग उन दानों को तनिक भी न करके हाँ करेंगे, ये भगवान नाम कर रहा है, भगवान की भक्ति में बहुत प्रवीण है, ये सब प्रशंसाएं होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दुष्ट कहीं का अपनी भावनाओं को हमारे ऊपर में ला रहा है, जाओ तुम असुर बनो और तुम्हारा पिता ही तुमको मारेगा जिसके यहां जन्म देगा। बस वो जन्म लिया कहां पर लिया? हिरण्यकशिपु के भाई के कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। हिरण्यकशिपु से उनका कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरे जन्म में अपने पिता के हाथ से कालनेमी के हाथ से मारे गए, तीसरे जन्म में वो कालनेमी हुआ कंस। और वो छह पुत्र जो थे वो सड़गर्भा के नाम से देवकी के गर्भ में आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का साप और वरदान दोनों का तात्पर्य एक है, इनका कल्याण हो। नारद ऋषि किसको साप देते हैं, किस लिए देते हैं?